Om Shanti. कई सालों पहले भारत के किसी एक गुरुकुल में सभी शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो सभी शिष्यों ने अपने गुरु को कुछ न कुछ भेंट दी। उसमें से एक शिष्य जो था बहुत ही दरिद्र था, देने को उसके पास कुछ भी नहीं था। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और आंसू गुरु के चरणों पर गिरे। गुरु ने कहा कि तुम्हें और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, जो आंसू तुमने दिए हैं और जो प्रेम तुम्हारा है, इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा और कोई नहीं। परंतु वो शिष्य कहने लगा कि नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ और आप वचन देना कि भविष्य में यदि मैं आपको कुछ दूं तो आप उसे जरूर स्वीकार करेंगे। गुरु कहते हैं हाँ, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। और वह शिष्य ऐसे ही खिन्न मन से उस गुरुकुल से निकल जाता है, दूर कहीं अपने एक मित्र के यहाँ रुकता है और उस मित्र से अपनी व्यथा को कहता है कि मैंने अपने गुरु से सब कुछ लिया परंतु अंततः उन्हें कुछ दे नहीं पाया। उसके मित्र ने कहा तुम क्या देना चाहते हो? उसने कहा कि मेरा बस चले तो मैं 5 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूँ। उसके मित्र ने कहा इसमें अड़चन ही क्या है, जिस देश में तुम आए हो इस देश का ये जो राजा है हमारा बहुत ही दानवीर है और उसका ऐसा एक नियम है कि जो भी सबसे पहला याचक उसके पास आ जाए, मांगने वाला उसके द्वार पर पहुंच जाए, जो वो याचक कहेगा राजा उसे वो दे देता है। निश्चिंत होकर वशिष्य सोया और सुबह सुबह जल्दी उठकर सीधा राजा के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ। उधर से राजा आए, उसने कहा कि देखो राजा, मैं आपके द्वार पर पहला ही याचक हूँ और मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। यदि मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप दोगे? राजा ने कहा तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वो अभी कहने ही वाला था कि मुझे 5 अशर्फियां चाहिए, तो राजा ने कहा तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। जैसे ही राजा ने यह बात कही 5 अशर्फियों की बात अब छूट गई। उसने कहा कि जब राजा ये कह रहा है कि जो चाहिए वो मांग लो तो 5 क्यों मांगू, 5,000 क्यों नहीं मांगू? और फिर उसके मन में चक्र चालू हुआ। जब सोचा कि 5,000 मांगना है तो 5,00,000 क्यों नहीं मांग लू, जब राजा सब कुछ ही देने को तैयार है तो? फिर धीरे धीरे वो जो भेंट थी वो दिल से छूट गई, वो जो गुरु था अब तो कहीं के कहीं चला गया। और फिर उसके मन में अगर 5,00,000 ही मांगना है तो 5 अरब और 5 खरब क्यों नहीं मांगू? और जब मन में ऐसा द्वंद चालू हुआ तो फिर सोचने लगा कि राजा ने तो कहा है जो चाहिए वो ले लो, तो क्यों मैं इन अशर्फियों को मांगू, कुछ और क्यों नहीं मांग लू, क्यों ना सब कुछ ही मांग लू जो राजा के पास है? तो राजा कहता है क्या हुआ, क्या अभी तक कोई निर्णय नहीं किया? उसने कहा बस अब करता ही हूं, थोड़ी सी कृपा कीजिए, आप थोड़ा एक चक्कर लगा के आ जाइए, तब तक मैं सोचता हूँ क्या मांगना है। और राजा फिर से बगीचे में चक्कर लगाने जाता है और वो सोचने लगता है क्या मांगू, और अंततोगत्वा इस निर्णय पर पहुंचता है कि राजा सब कुछ देने को तैयार है तो मैं राजा से सब कुछ ही मांग लेता हूँ, उसका राज्य, उसका सिंहासन, सब कुछ। और फिर राजा कि पदचाप सुनाई देने लगी तो सोचने लगा कि इसके ये जो वस्त्र है ये भी क्यों छोड़ू, अब जब ये सब कुछ देने को ही तैयार है तो जो आभूषण इसने पहने और जो वस्त्र इसने पहने हैं वो मैं क्यों छोड़ूं। तो राजा वहां पहुंचता है, तब तक भी वह निर्णित नहीं हो पाता। तो राजा उससे पूछते हैं, मांगो, क्या मांगना है। तो वो अपनी इस बात को कहता है और जैसे ही राजा इस बात को सुनता है उसे लगता है, पता नहीं राजा ये बात को सुनकर कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए, कोई धक्का ना लग जाए इसे। तो जैसे ही वो राजा को ये बात कहता है, राजा को धक्का नहीं लगता, इसे ही धक्का लगता है। राजा अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ करता है और कहता है, धन्यवाद प्रभु, जिसका इंतजार था वो आ गया। उसे आश्चर्य लगता है। अब उसके मन में फिर से द्वंद उत्पन्न होता है। वो सोचता है, मैंने तो सोचा था कि ये बात सुनकर राजा घबरा जाएगा, पर घबराता वो स्वयं है। राजा उससे कहते हैं कि ये वस्त्र भी मैं क्यों छोड़ू, तुम पछताओगे, तुम्हारी उम्र के लड़के जरूर पछताएगा तू, तुम्हारी उम्र में तो फिर बाद में तुम्हारे मन में क्रोध जागृत होगा कि तुमने राजा को ये वस्त्र भी क्यों दे दिए। तुम कहो तो ये वस्त्र भी निकाल कर जाने को मैं तैयार हूं। उसे आश्चर्य होता है, फिर से सोच चलने लगती है, ये क्या हो गया। कहता है कि आप थोड़ा एक दूसरा चक्कर लगा के आ जाओ, तब तक मैं कोई निर्णय करता हूं। राजा दूसरा चक्कर लगा के भी आ जाते हैं और फिर जाने को तैयार ही होते हैं तो सोचने लगता है मन ही मन कि ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूं पर राजा के लिए वो व्यर्थ है। ऐसा कुछ तो होगा, क्या ऐसे ही इनके बाल शुभ्र तो नहीं हुए हैं, ऐसा कौन सा अनुभव है इनके पास, ऐसा क्या जीवन में देख लिया है इन्होंने कि जीवन की सारी संपदा व्यर्थ लगने लगी है और इतना राजी है सब कुछ छोड़ने के लिए, इतना राजी खुशी निकल पड़ा है। राजा जब वहां पहुंचता है वो युवक वहां नहीं होता, आर पार देख लेता है। वह कीन ऑब्जर्वेशन, वह जीवन के प्रति तीव्र निरीक्षण की आंखों से प्राप्त हो जाती है। देख लेता है कि राजा की कहानी एक व्यक्ति की कहानी, एक मनुष्य की कहानी, मनुष्य की कहानी नहीं है, मानवता की कहानी है और मैं कोई अपवाद नहीं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो सोचता है आई एम द एक्सेप्शन, मैं अपवाद हूं, जो राजा के जीवन में घटित हो रहा है वो मेरे जीवन में भी घटित हो रहा है। जो धन, जो ऐश्वर्य, जो संपदा वहां व्यर्थ हो गई है वो यहां भी व्यर्थ होनी चाहिए। इस राज को मनुष्य नहीं जानता, नहीं समझ पाता, इसके लिए भटकता है, वन वन भटकता है, घाट घाट का पानी पीता है, फिर भी अनुभव नहीं आता। इसी तरह आज के इस सत्र की शुरुआत एक दूसरी छोटी घटना से करेंगे। ये दूसरी छोटी घटना बच्चों की कहानियां है। ये बच्चों की कहानियां वास्तव में कभी कभी बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े सिद्धांतों की किताबें, बड़े बड़े ग्रंथ वो बातें नहीं सिखा पाते जो कि बच्चों की कहानियां सिखा देती है। ये कहानियां एक छोटी सी कन्या की, एक छोटी सी बालिका जिसका नाम था एलिस, कहानी जो कि 19वीं शताब्दी में लिखी गई थी, वो किताब जिसका नाम था एलिस इन वंडरलैंड। एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है एलिस। एक दिन बैठी होती है अपनी बहन के साथ और देखती है कि एक सफेद खरगोश वस्त्र धारण किए हुए है, कपड़े पहने हुए है, जिसके पास एक घड़ी भी है। उसे आश्चर्य होता है ये कौन सा खरगोश है और देखती है ये खरगोश अपनी मांद में चला गया है। और वो एलिस छोटी सी बच्ची भागते हुए आश्चर्य से भरी हुई उस मांड में कूद जाती है और दिव्य लोक में पहुंच जाती है, एक स्वप्न जगत में, एलिस इन वंडरलैंड। और उस वंडरलैंड में देखती है सब कुछ अजीबो गरीब चीजें हैं, वहां पर प्राणी है पर मनुष्य की भाषा बोल रहे। उस वंडरलैंड में सुबह पहुंचती है थकी हारी, थकी मांदी वो एलिस भूखी प्यासी होती है। देखती है कि सुबह का सूरज उग रहा है, उसे प्यास लगी है, भूख लगी है। देखती है सामने एक रानी खड़ी है जिसके हाथों में फल है और थाल है मिठाइयों के, और वो भागने लगती है क्योंकि बहुत भूखी है और प्यासी है। भागती है, भागती है, भागती है और भागती है, परंतु देखती है कि फासला तो उतना ही है। रानी अब भी दरख्त के नीचे वहां खड़ी है, उस पेड़ के पास, और एलिस भाग रही है। सूरज उग रहा है और देखते ही देखते दोपहर ही हो गई। सूरज आसमान में है, पसीने से तरबतर एलिस भाग रही है और भाग रही है, परंतु देख रही है अंतर अभी भी उतना ही है, फासला उतना ही है। एलिस भाग रही है और कह रही है रानी से, ये कैसी तुम्हारी दुनिया है हे रानी, ओ क्वीन, कि मैं इतना भाग रही हूं पर फासला उतना के उतना ही रहता है, और दिन ढला जा रहा है, मैं भूखी हूं, मैं प्यासी हूं। एलिस भाग रही है, रानी उसे पूरा बोल रही है, सोचो नहीं ज्यादा, ज्यादा सोचोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगी, तुम केवल भागते रहो, भागते रहो। एलिस भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। रानी उसे पुकार रही है, एलिस आ जाओ, ये लो तुम्हारे लिए मैंने ये मिठाइयां तुम्हारे लिए है। देखते ही देखते शाम हो गई, सूरज ढल गया, एलिस गिर के धरती पर गिर पड़ी, और फिर उस रानी से फिर से कहती है कि रानी ये कैसी तेरी दुनिया है, मैं सुबह से भाग रही हूं पर वही हूं, फासला उतना ही है, डिस्टेंस इज सेम ओ क्वीन, मैं क्या करूं। रानी उससे एक अद्भुत महावाक्य कहती है, हे एलिस, इस दुनिया में आज तक कोई कहां नहीं पहुंचा है, चाहे जितना भागना है भाग लो, कहीं आज तक इस दुनिया में कहीं नहीं पहुंचा है। जन्म से लेकर भागना आरंभ करता है और भागता ही जाता है और भागता ही जाता है, परंतु पहुंचता कहीं नहीं। दिखता है क्षितिज सामने है, परंतु वो क्षितिज कभी नहीं आता, क्योंकि वो इच्छाओं का क्षितिज है, वो कभी पूर्ण नहीं होता, वो क्षितिज है ही नहीं। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई मंजिल नहीं इस धरती पर जहां पर यह पृथ्वी आकाश से मिलती है, परंतु मनुष्य भागते जाता है और भागते जाता है। उसकी कोई इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, दुष्पूर ये इच्छा है, ये इच्छा है, ये वासना है, वैसे ही रहती है। तो पहली कहानी में उस युवक ने, उस शिष्य ने ये चीर कर देख लिया कि संसार में जो भी कुछ है उससे व्यक्ति रिक्त ही रहता है, खाली ही रहता है, पाता कुछ भी नहीं। और दूसरी ये छोटी घटना जिसमें रानी कहती है कि इस संसार में कोई कहां भी नहीं पहुंचा है, ये इच्छाओं का और इस आवश्यकताओं का जो चक्र है मनुष्य को कहीं नहीं पहुंचाता है, कितना भी कुछ पा ले वो सुकून नहीं, वो चैन नहीं, वह सुख, वह सच्चा सुख और वह सच्ची शांति, आंखों में वो नींद नहीं। कैसी ये दौड़ है। विदेश के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक इब्राहिम मास्लो एक बहुत बहुत ही अद्भुत किताब लिखी है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, अभिप्रेरण और व्यक्तित्व। जो सिद्धांत उसने वहां पर रखे बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत रखे, उसने बताया हायरकी ऑफ नेसेसिटी, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या क्या है। उसने एक पिरामिड बनाया, उस पिरामिड में मनुष्य की आवश्यकताओं को रखा। सबसे पहली आवश्यकता उसने जो बताई वो कहा कि फिजिकल नीड्स, दैहिक आवश्यकताएं जो हर व्यक्ति को चाहिए, जब तक ये आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है वो बेचैन रहता है। क्यों व्यक्ति बेचैन रहता है, वो कौन सी आवश्यकता है जो पूर्ण होनी चाहिए और जो वास्तव में आवश्यकता है, ऐसी हायरकी ऑफ नीड्स पदानुक्रम आवश्यकताओं का उसने रखा। सबसे पहले पिरामिड में नीचे रखा फिजिकल नीड्स, जिसको कहा दैहिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा जो भी, भूख प्यास फूड वाटर वो सब की आवश्यकता है। वो पूर्ण हो जाए तो उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद व्यक्ति को शेल्टर सिक्योरिटी सुरक्षा चाहिए, कोई सहारा चाहिए रहने के लिए, मकान चाहिए, ये सिक्योरिटी ये दूसरी आवश्यकता है। वो भी मिल गया परंतु व्यक्ति तृप्त नहीं होता है, फिर तीसरी आवश्यकता है उसकी प्रेम बिलोंगिंगनेस, कोई चाहने वाला, कोई केयर करने वाला, कोई अटेंशन देने वाला। चलो वो भी आवश्यकता पूर्ण हो गई। चौथा पिरामिड में जो चौथा स्तर उसने बताया है वो है एस्टीम आत्मसम्मान। फिजिकल नीड्स पूरी हो गई, सिक्योरिटी मिल गई, शेल्टर मिल गया, प्रेम मिल गया, केयर मिल गई, अटेंशन मिल गया, वहां पर भी वो संतुष्ट नहीं होता है, उसके बाद क्या चाहिए? एस्टीम आत्मसम्मान चाहिए। और पांचवी बात पर आकर वो रुक गया। उसने कहा पांचवी बात से भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, चौथी बात से, पांचवी जो चीज चाहिए, एक नया शब्द उसने खोजा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आत्मसात। अर्थात हर व्यक्ति ये चाहता है मैं कुछ बन जाऊं, कुछ हो जाऊं, जो मैं कुछ कर सकता हूं इस जीवन में वो कर लूं। इतने ये उसने पांच बातें रखी। परंतु ये मास्लो जब वृद्ध होने लगा, उसने देखा कि ये पांच बातें तो मेरे जीवन में है फिर भी मैं अतृप्त हूं। जीवन के अंतिम समय में उसने एक और एक छठवीं बात रख दी, जिसमें जिसको उसने कहा सेल्फ ट्रांसेंडेंस भावातीत अवस्था। ये वो नीड है, ये आवश्यकता है जहां से अध्यात्म का जन्म होता है। स्पिरिचुअलिटी ये आत्मा के तल पर है। जब तक आत्मा की ये आवश्यकता पूर्ण नहीं होती, ये नीचे की जो पांच चीजें हैं, फिर भी व्यक्ति अतृप्त ही रहता है। जो ये अंतिम सिद्धांत उसने कहा सेल्फ ट्रांसेंडेंस, ये देह से परे, इन भावों से परे, संसार की आवश्यकताओं से परे, यहां की हर बात से परे, आत्मा तृप्त जो होती है अपने स्वस्वरूप में स्थित होने से। और वो खुद जो पहले इतना आस्तिक नहीं था, बाद में आस्तिक बना, अध्यात्म की ओर मुड़ा और उसे तब प्यास जगी आत्मा के तृप्ति की। तो आज की मुरली में कौन किसको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर अपनी सारी वंशावली को देख रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने ग्रेट ग्रेट डॉटर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने आए हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा है, इस वंशावली की वृद्धि कैसे हुई जानते हो? इस राज को समझते हो कि हमसे वो वृद्धि हो रही है? इस वंशावली को देखते हुए क्या ये संकल्प आता है कि ये कौन है? एक चित्र बनाया है बाबा ने, जिस चित्र में एक उल्टा वृक्ष है, जिसमें एक बीज है, दो पत्ते हैं, तना है और फिर शाखा है और उपशाखा है और डाल और डालिया और पत्ते और पर्ण है। ऐसा ये उल्टा वृक्ष है जिसका बीज वो स्वयं है, जिसके दो पत्ते निकले हैं और इस त्रिमूर्ति के साथ जुड़ा है एक तना, वो ट्रंक कौन है, वो मूल फाउंडेशन कौन है, वो आधार कौन है? हम लोग ही हैं। तो बाबा ने कहा, जब भी किसी को देखते हो, जब भी किसी के संपर्क में आते हो, तो क्या ये स्मृति में आता है कि हम भी वो तना है, हम भी वो मूल फाउंडेशन है, हम ही वो पूर्वज है, अग्रज है, पुरखे है, इस संसार के एंसेस्टर, यहां के फोरफादर, यहां के प्रोजेनिटर तुम हो, तुम बड़े हो। पूर्वजपन की स्मृति, बुजुर्गपन की स्मृति सदा रखो, तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त बन जाओगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, सदा ये समझते हो कि हम पूर्वज हैं, हम बड़े हैं? यदि बीज या फिर तना यदि कमजोर रह जाए तो वो झाड़ भी कमजोर होगा। यदि बीज और तना शक्तिशाली है तो वो वृक्ष भी शक्तिशाली होगा। हम पूर्वज हैं। निरंतर ये बात स्मृति में रखना, हम बड़े हैं, हम पहले आए हैं। इस संसार की जो भी रचना है, ये जो क्रिएशन है, ये जो वंशावली है, ये जो पत्ते हैं, बाद में आए। प्रश्न अब ये है कि हम पूर्वज आत्माओं के क्या कर्तव्य है, जो बड़े होते हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं? एक जगह बाबा ने कहीं, दूसरी जगह कहा है, तुम मास्टर शिक्षक हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, स्टूडेंट्स तुम्हारे सामने है। एक तरफ तो बाबा कह रहा है तुम पूर्वज हो, तुम्हारी ये रचना है, तुम्हारी ये वंशावली है, दूसरी तरफ हम मास्टर शिक्षक है और ये हमारे सारे स्टूडेंट है, हर समय हर वक्त उठते बैठते खाते सिखाने वाले हो। स्टूडेंट्स तुमको देख रहे हैं, स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं मास्टर शिक्षक हूं, मास्टर सदगुरु, मास्टर शिक्षक और इधर पूर्वज। तो ऐसी पूर्वज आत्माएं, ऐसी प्रोजेनिटर आत्माएं, ऐसे फोरफादर, ऐसे एंसेस्टर, ऐसे पुरखे, ऐसी अग्रज आत्माएं, ऐसी बड़ी आत्माओं के क्या कर्तव्य है, क्या करना है? जो भी आत्मा को हम देखते हैं, जिसके भी संपर्क में आते हैं, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई भी, यहां तो अज्ञानियों की बात चल रही है, जिसके भी हम संपर्क में आए तो क्या सोचे? बाबा ने कहा बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, बेहद के स्मृति स्वरूप बनो। ये करने से कुछ बातें ऐसी हो जाएगी जो उनके ऊपर होगी, कुछ बातें हमारे लिए हो जाएगी, दोनों तरफ से फायदा है। कुछ बातें हमारे साथ हो जाएगी और कुछ बातें उनके साथ हो जाएगी। परंतु फिर भी जो प्रश्न हमने पूछा है उसका उत्तर क्या है? जो बड़े होते हैं घर में, जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनके क्या कर्तव्य, क्या ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? माताएं बताएंगी क्या कर्तव्य है अपने बच्चों के प्रति। उनकी पालना करनी है, सस्टेनेंस देना है उन्हें, और उनके उनमें अच्छे संस्कार भरना है, उन्हें सुसंस्कारित बनाना है, और दो हो गए। अगर वो गलती करता है तो उसे समझ देनी है, उसे सिखाना है, उन्हें महसूस कराना है। और ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है, दिखाया ना, वो उनके घर में दो बच्चे आ गए थे और मिठाइयां नहीं, हीरे लेकर चले गए थे। फिर वो खुद उनके घर गए, उनको मिठाइयां दी और उनको समझाया, डांटा नहीं, आग दिखाना, दो तीन दिन पहले मुरली में आया था ना, जोर से बोलना, क्रोध से काम बिगड़ते हैं। तो क्या करेंगी माताएं अपने बच्चों के प्रति? उनको प्यार देना और उसके साथ में दोस्त की तरह रहना, बड़ों को कभी कभी छोटों जैसा बनना पड़ता है, दोस्त की तरह उनके साथ व्यवहार करना। विदेश में एक बहुत अद्भुत किताब लिखी गई है, सेंस ऑफ वंडर, 70 साल की एक स्त्री है उसने यह किताब लिखी है, रेचल कार्सन, उस लेखिका का नाम है रेचल कार्सन। उसने लिखा है कि मैं 70 साल की हो गई हूँ, जीवन में कोई आनंद नहीं आया, क्या करूँ आनंद पाने को, सोचती है क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग करूँ। एक 3 साल का बच्चे से वो दोस्ती करती है, और दोस्ती इसके लिए नहीं करती है कि मुझे उसका कोई बड़ा बनकर उसे सिखाना है, मुझे वही करना है जो वो करता है। 3 साल के बच्चे के साथ दोस्ती करती है, 5 साल तक, 2 साल तक ये दोस्ती चलती है, और फिर उसने ये किताब लिखी। उस किताब में वो लिखती है कि मैंने उस बच्चे के साथ वही सब कुछ किया जैसा वो बच्चा था, मैं उसे सिखाना नहीं चाहती थी, मैं उसके साथ उसके जैसा ही बनकर रहना चाहती थी। वो रोता था तो मैं भी रोती थी, वो हंसता था तो मैं भी हंसती थी, वो जब थोड़ा चलने लगा, दौड़ने लगा, तो मैं भी उसके साथ दौड़ने लगी। वो 5 साल का हो गया, वो समुद्र के तट पर है, मैं भी समुद्र के तट पर हूँ। उसका मन कैसा आश्चर्य से भरा है, क्या है ये समुद्र, क्या है ये सीप, क्या है ये मोती, क्या है ये रेत। वैसे ही आश्चर्य से, वैसे ही अहोभाव से, वैसे ही जिज्ञासा मेरे भी मन में भर गई। मैं वैसा ही सब कुछ करने लगी जैसा वो बच्चा करने लगा, और फिर उसने अनुभव लिखा कि जीवन में जो आनंद मैंने पाया है बच्चा बनकर। आज की मुरली उसके विरोध में है मैंने कभी नहीं पाया, परंतु यहाँ बात चल रही है छोटों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए, उनके जैसा बन जाना, उनसे उनका दोस्त बन जाना। हमेशा ही सिखाते रहोगे तो वो शिक्षा स्वीकार नहीं होती है। और क्या कर्तव्य है पूर्व जातमाओं के, बहुत कम बताए, बहुत बाकी है। माता है, बताओ फटाफट क्या करना है पूर्व जातमाओं को, बड़ों के क्या कर्तव्य है बच्चों के प्रति, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनना है हमें, वो हमें देखकर सीखे कि हमें ऐसा बनना है, हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ है, इतना ऊंच हो, जो शिक्षाएं हम उन्हें दे रहे हैं वो हमारे जीवन में हो, हम उनका स्वरूप हो। यदि हम स्वरूप ही नहीं है तो हम क्या सिखाएंगे उनको। तो हम जो संसार की पूर्वज आत्माएं, हमारा भी क्या कर्तव्य है इस संसार की आत्माओं को के लिए प्रेरणा बनना, आदर्श बनना, उन्हें प्रेरित करना। अगर वो गलती करे तो क्षमा करना, माफ करना, यदि वो बात ना माने तो प्यार से लाड़कोड़, मुरली में शब्द आया है लाड़कोड़, उन्हें समझाना, उन्हें शिक्षित करना। और एक महत्वपूर्ण काम है उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना, इतनी भी केयर नहीं करते रहना कि वो हम पर ही निर्भर हो जाए, ऐसी निरालंब की स्थिति में उन्हें ले चलना, सारे अवलंबन खो जाए, वो खुद खड़े हो सके, उन्हें उनके अंदर विचार करने की क्षमता आ जाए, तर्क करने की क्षमता आ जाए, खुद पैरों पर खड़े हो जाए, सेल्फ रिलायंस का ये गुण आ जाए, उन्हें संयम सिखाना। ये सभी कर्तव्य है, ये तो थे माँ बाप के बच्चों के प्रति। अब हम विश्व की पूर्वज आत्माओं के, संसार की आत्माओं के प्रति क्या कर्तव्य है, उन संसार की आत्माओं की क्या आवश्यकता है। वो हम में कुछ नवीनता चाहती है, बाबा ने आज की मुरली में कहा है, वो आत्मा चाहती है, उनकी कुछ चाहना है, उनकी कुछ शुभ आश है, उनके कुछ शुभ संकल्प है, वो याद प्यार से हमें याद कर रही है, हमसे कुछ शक्ति चाहती है, ढूंढ रही है, ये उनकी कामनाएं है, ये उनकी आशाएं है, उनकी आवाज सुनाई देती है, उनकी नजरें ढूंढ रही है तुमको। मुरली में बाबा ने कहा उनकी नजरें तुमको ढूंढ रही है। तो हे पूर्वज आत्माओं, ओ एंसेस्टर्स, इग्नाइट द लैंप ऑफ होप्स ऑफ योर अटेंडमेंट्स, अनुभव के, प्राप्तियों के, उनकी आशाओं के दीपक जलाओ, और उन्हें यथार्थ मार्ग, यथार्थ मंजिल पर ले आओ, ठिकाना दो उन्हें, क्षमा बन जाओ और रास्ता दिखाओ, अमर ज्योति बन जाओ और अंधकार को मिटाओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है। उनकी जो आवश्यकता है उन्हें पूर्ण करना है। क्या चाहती है ये आत्माएं? अभी जितनी बातें हमने गिनाई, जो जो आत्मा हमारे संपर्क में आते हम ये सोचे कि इनकी पालना हमें करनी है, इन्हें शिक्षित करना है, क्योंकि हम मास्टर शिक्षित शिक्षक भी है, मास्टर सद्गुरु भी है, उन्हें वरदान भी देना है, उनमें इतनी शक्ति नहीं है, अपने जीवन द्वारा उन्हें सिखाना है, उन्हें वो सब चीजें नहीं चाहिए जो उनके पास पहले से है। हमारी वाणी अब नहीं सुनना चाहते, बेबी बॉम्ब्स नहीं फेंको, बाबा ने कहा बहुत फेंक लिया बेबी बॉम्ब, अब ऐसा बॉम्ब फेंको कि सीधा जीवन परिवर्तन हो जाए, ऐसा प्राप्तियों के अनुभव का बॉम्ब, ऐसा विस्फोट करो, ऐसा ये बॉम्ब हो। मुख के तीर बहुत हो गए, अभी दिल, हर आत्मा की पालना करना, हर आत्मा को इस दृष्टि से देखना कि ये हम पूर्वज है, ये हमारी वंशावली है। हर आत्मा को इस दृष्टि की दृष्टि से देखना, चाहे वो कैसी भी हो। वरदान में कहा है अपकारी है, सेकंड में उपकार करो। स्वभाव संस्कार का पेपर बनकर आ रही है, हम रहम दिल का स्वभाव संस्कार धारण करें। देह दृष्टि, देहधारी दृष्टि से आई है, हम आत्मिक दृष्टि, तो विघ्न जीत होंगे, तो विघ्न से मुक्त होंगे, तो ये हमारे कर्तव्य है, ये हमारी आवश्यकता, ये उनकी आवश्यकता है, वो शुक्रिया अदा करेंगे फिर हमारा। उनकी क्या आवश्यकता है, दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न था हमारे कर्तव्य क्या है उनके प्रति, उसको फिर से विस्तार में लेंगे हम। दूसरा प्रश्न है उनकी आवश्यकता क्या है, चैन की नींद आ जाए, सच्ची सुख सच्ची शांति की वो आत्माएं प्यासी है, कहां कहां ढूंढ रही है, परंतु उन्हें ठिकाना नहीं मिल रहा है, संतुष्टता का अनुभव नहीं हो रहा है। नेति नेति, नीदर दिस नॉर दैट, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो वेदांत के महावाक्य है ये, जो भगवान के लिए वहां पर ज्ञानी ढूंढता है कि ये सब भगवान नहीं फिर ब्रह्म क्या। बाबा ने इस महावाक्य का यहाँ प्रयोग किया है कि संसार की आत्माएं कभी गुरुओं की शरण में जा रही है, तीर्थ यात्राएं कर रही है, कितनी भक्ति कर रही है, परंतु वापस लौट रही है, अनुभव हो रहा है कि रास्ता कोई और है, इस अनुभव तक वो आ गई है। संसार में जितनी धार्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, अध्यात्म है, उन सबसे सब कुछ तो मिल रहा है, परंतु वो नहीं, आत्मा तृप्त नहीं हो रही है, तृप्त है, वो यहां तृप्ति होगी। इस घर में आकर ही आत्मा तृप्त हो सकेगी, इस सागर के कंठे में आकर ही आत्मा की प्यास बुझेगी, तब तक ये प्यास बुझ नहीं सकती, तो आत्मा अशांत है, दुखी है, नकली चेहरा धारण किए हुए, कल वरदान सुना ना, दुखी है, अशांत है, क्रोधी है, लोभी है, असली स्वरूप इससे परे है। उस असली स्वरूप को जानने के लिए यहां आना पड़ेगा और हमारे संपर्क में आना पड़ेगा, तो हमारे कर्तव्य बहुत ऊंचे हैं। उन्हें कुछ देना पड़ेगा, स्थूल सब कुछ उनके पास है, संपत्ति उनके पास है, साधन उनके पास है, चाहिए क्या उन्हें, सूक्ष्म शक्ति चाहिए, वो हमारे पास है, वो पाना चाहती है, प्राप्ति की अनुभूति करना चाहती है। आगे बाबा ने कहा है पाना था सो पा लिया, ये तुम्हारा गीत है, वैसे उनका भी गीत हो जाए। वहां पर और एक प्रश्न पूछा है, पर क्या स्वयं तुम तृप्त हो, क्या स्वयं हम तृप्त है, क्या हम सर्व अनुभूति स्वरूप है, तभी हम दूसरों को दे सकेंगे। अब बाबा से कब तक लेते रहेंगे, अभी कौन सा समय है, ये दाता वरदाता का, देने का समय है आत्माओं को। आत्माएं बहुत अशांत है, बहुत दुखी है, सूक्ष्म शक्ति, कौन सी वो सूक्ष्म शक्तियां हैं जो हमें देनी है, पहली कौन सी, श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्पों का अकाल है संसार में, किसी के पास श्रेष्ठ संकल्प नहीं, हजारों किताबें है, हजारों गुरु है, हजारों धर्म स्थान है, हजारों प्रवचन है, हजार प्रकार की भक्ति है, 300 से भी अधिक धर्म इस धरती पर है, पिछले 2500 साल में 15,000 से भी ज्यादा युद्ध इस धरती पर हुए हैं, रक्त रंजित हुई है ये धरा बार बार, 15,000 युद्ध, शायद ही कोई दिन होगा जब युद्ध ना हुआ हो, या फिर ये कहा जा सकता है, किसी ने अनुमान लगा 300 ही दिन है जब युद्ध नहीं थे, परंतु वो 300 ही दिन एक साथ नहीं, बीच बीच में, और वो 300 ही दिन ऐसे होंगे कि जब युद्ध की तैयारी हो रही थी। युद्ध ही युद्ध। तो इस संसार में श्रेष्ठ संकल्प कहीं नहीं। मुरली का एक एक महावाक्य श्रेष्ठ संकल्प है, जिसका खजाना हमारे पास है। संसार में हजारों भक्ति की किताबें और बाहर की किताबें, परंतु बल देने वाला कुछ भी नहीं है। प्रेरणा जरूर दे दे थोड़े समय के लिए, परंतु शक्ति प्राप्त नहीं होती। ये वाक्य जो बाबा ने उच्चारण किया, जिसे हम मुरली कहते, अव्यक्त वाणियां कहते, उन वाक्यों में एक अव्यक्त प्रवाह है, एक वाइब्रेशन है। ये साधारण महावाक्य नहीं है। यदि कोई एक महावाक्य भी कोई व्यक्ति याद कर ले, एक ही महावाक्य, ज्यादा नहीं, तो वो महावाक्य उस आत्मा में बल का काम करेगा, शक्ति बन जाएगा, और परिस्थिति के समय वही महावाक्य उसे अचल अडोल रखेगा। केवल एक महावाक्य। बाबा ने कहा है, तुम्हारे मस्तक पर स्लोगन दौड़ाओ। कौन सा? केवल एक स्लोगन, छोटा सा, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, चार शब्द है। मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दौड़ाओ। ये सर्टिफिकेट यहाँ तो वहां सर्टिफिकेट। ऐसी संतुष्ट मनिया, यदि कोई ये सोच ले कि मुझे संतुष्ट रहना है, छोटा सा संकल्प है, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां, बाधाएं, विघ्न, ऑब्स्टेकल आएंगे, परंतु वो अचल रहेगा केवल एक छोटे से संकल्प से, छोटा सा स्लोगन जो बुद्धि में था, याद हो गया था, कहीं अवचेतन में समा गया। छोटा सा ही संकल्प है, और ये संकल्प की दूसरा व्यक्ति है जिसके पास नहीं है, उसका जीवन शिकायत, कंप्लेन, दुख से भर जाएगा। तो बाबा का एक एक महावाक्य, एक एक शब्द जो उसने कहा है, उसमें एक अद्भुत, एक अनूठा प्रवाह है, प्रभाव है, शक्ति है, पावर है, पोटेंशियल है, इन्फ्लुएंस है। श्रेष्ठ संकल्प एक। तो आत्माओं को क्या चाहिए? श्रेष्ठ संकल्प। दूसरा, शुभ वृत्ति। संसार में आज वासनाओं की आंधी चल रही है। कहां कौन किसके प्रति शुभ वृत्ति रखता है? देहधारी दृष्टि है आज के वरदान से सभी आत्माओं की। देह को देखते हैं, देह के सौंदर्य को देखते हैं, देह के रंग को देखते हैं, काला गोरा देखते हैं। एक निग्रो किसी चर्च में जाता था, वहां के पादरी ने उससे कहा, तुम इस, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि निग्रो है, कि नहीं आओ, काली चमड़ी वाले हो, उससे कहा कि देखो तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा है, तुम पहले पापों से मुक्त होके फिर आना, भगवान तभी तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। अब वो निग्रो व्यक्ति इतना दुखी हो गया, सोचता था इसके लिए तो यहां जा रहा हूं, और फिर भी मुझे रोक दिया। परंतु पहले जमाने की बात और थी, इसके लिए इस पादरी ने, थोड़े चर्च के इस पादरी ने नए शब्दों का प्रयोग किया कि पहले शुद्ध हो जाओ फिर आना। डायरेक्ट तो नहीं कह सकता था कि मत आओ। वो व्यक्ति चला गया, वापस नहीं आया। कुछ महीनों के बाद उस पादरी को वही निगरो मार्केट में झूमता हुआ, नाचता हुआ दिखा। तब आया तो बहुत दुखी था, उसने पूछा, क्या हुआ, इतने खुश क्यों, क्या तुम्हें भगवान मिल गया? उसने कहा, भगवान तो नहीं मिला, परंतु मेरे स्वप्न में भगवान आए थे और उन्होंने कहा था, जिस चर्च में तुम जाने की कोशिश कर रहे हो, उसने, भगवान ने मुझसे पूछा था क्यों दुखी हो, तो मैंने कहा था उस चर्च में मुझे जाने नहीं दिया, तो भगवान ने मुझसे कहा था उस चर्च में तो मैं खुद घुसने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, फिर मैं जा नहीं पाया हूँ, तो तुम कहाँ से जाओगे? तो संसार में जाति भेद, रंग भेद, सब कुछ है। शुभ वृत्ति कहां मिलेगी? ऐसा संसार में कोई व्यक्ति होगा, कोई शंकराचार्य होगा, जो सोचता होगा कि मैं पूर्वज हूं, मुझे सबकी पालना करनी है, मैं सबसे बड़ा हूं, ये सब मेरी वंशावली है, मेरा क्रिएशन है, मेरी रचना है, मैं इस धरा पर सबसे पहले आया हूं, ये मेरे कर्तव्य है, नहीं सोचता है कोई भी। तो दूसरा है ऐसी शुभ वृत्ति हम में है। तीसरा स्नेह की दृष्टि। संसार में स्नेह नहीं है, लुप्त हो रहा है संसार में स्नेह। ऐसी स्नेह की दृष्टि केवल और केवल हम पूर्वजात्माओं के पास है और सहयोग। संसार ने तो असहयोग का आंदोलन छेड़ रखा है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण का कार्य है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, सभी इस सम्मान से बैठेंगे कि मैं पूर्वज आत्मा हूं। उल्टा वृक्ष देखेंगे, मैं पूर्वज आत्मा मास्टर बीज रूप तना हूं। सारी शाखाएं, सारे पत्तों को हम रूहानी जल देने वाले, प्राप्ति का अनुभव करने वाली ऐसी बाप समान मास्टर बीज रूप ऐसी पूर्वज आत्मा हूं। स्थूल के विस्तार में सूक्ष्म कहीं गुप्त ना हो जाए। साइंस का उदाहरण दिया बाबा ने कि क्या कर रहे हैं, ऐसे स्थूल और सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन निर्माण कर रहे हैं। अभी एक हफ्ता पहले न्यूज़पेपर में आया था, रशिया ने एक नया मिसाइल लॉन्च किया है सैटर्न 2, जो कि 2018 में आएगा बाहर। उस मिसाइल में इतनी शक्ति है कि हिरोशिमा और नागासाकी के जो बॉम्ब थे उससे 2000 गुना अधिक शक्तिशाली है वो। पूरा के पूरा फ्रांस, पूरा के पूरा टेक्सास, पूरा के पूरा यूनाइटेड किंगडम और पूरा के पूरा यूएस उससे समाप्त हो सकता है। पहले बाबा कह रहे बहुत ज्यादा समय, शस्त्र और पैसा खर्च होता था, संपत्ति, परंतु अभी सूक्ष्म और शक्तिशाली शस्त्र बन रहे हैं। तो तुम्हें भी क्या करना है, सूक्ष्म से निर्माण करना है। किसका? ऐसे साधन निर्माण करना है जो सूक्ष्म शक्ति उनमें हो। केवल स्थूल साधन नहीं, सूक्ष्म शक्ति उसके पीछे हो। ये सूक्ष्म शक्ति कहीं गुम ना हो जाए, गुप्त ना हो जाए, खो ना जाए। क्योंकि संसार की आत्माओं के पास स्थूल सब कुछ है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हॉल हमारे पास है संसार की आत्माओं के पास नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जितनी धन संपदा आज यज्ञ में है उतनी बाहर नहीं है। जो टेक्नोलॉजी हम सोचते हैं हमारे यज्ञ में सबसे ज्यादा है, संसार में शायद इससे कई गुना अधिक है। ये तो सारी स्थूल चीजें, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो या हमारा भोजन हो या कोई भी इस तरह की चीजें हो। एक रीति से संसार के पास तो ये सब बहुत है, नाच गाना और सब कुछ। हमें उन्हें क्या देना है, सूक्ष्म शक्ति। वो बॉम्ब समय फेंकने, उनके दिल से निकले क्या निकले, पाना था सो पा लिया, ये एक। और ये लोग क्या करते हैं, कुछ कहा अच्छा कहा ये नहीं, अच्छा बनाते हैं। अच्छा सुना नहीं, अच्छा पाया, अच्छा अनुभव किया, अब ये कराओ। स्थूल सब कुछ है वहां पर, हमें उन्हें शक्ति देना है, सूक्ष्म की शक्ति देना है। जो उनके पास नहीं है, जो उनकी आवश्यकता है, जो उनको नवीनता चाहिए वो देना है। तो यहाँ पे बाबा ने और कुछ बातें कही, परंतु हम सीधा मधुबन निवासियों से मुलाकात पर आते हैं। पंजाब से बाबा ने बात की है, क्वालिटी क्वांटिटी की बात की है, मेले की बात की है। और मधुबन निवासियों से क्या कहा बाबा ने, सुबह बहन जी कह रहे थे ना, जब आज यहाँ हम हैं तो सभी मधुबन निवासी हैं। तो आज की तारीख में सभी मधुबन निवासी है। तो मधुबन निवासी अर्थात तकदीरवान, श्रेष्ठ तकदीरवान। कहाँ पर हो, बाप के संग में हो, श्रेष्ठ आत्माओं के संग में हो, इस कंठे पर हो। ऐसे खुश नसीब, ऐसी तकदीरवान आत्मा, ऐसी खुशकिस्मत, भाग्यशाली पद्मा पदम सौभाग्यशाली भाग्यशाली आत्माएं, जो इस सागर के कंठे पर हम हैं। वन्य भूमि वन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पावत तुम धारा। ये वो भूमि है जो तुलसीदास अयोध्या के लिए कह रहा है कि जहां भगवान ने पैर धरा है, सबसे बड़ा तीर्थ। तो हम सब कौन है, कितने ऊंचे ऊंचे स्वमान दिए है बाबा ने। हम सब कौन है, पहला स्वमान तकदीरवान आत्माएं, दूसरा मधुबन अर्थात मधु समान मीठा और दूसरों को भी मीठा बनाने वाले, तीसरा समान होली हंस है हम, इस कंठे पर रहने वाले मोती चुगने वाले रतन धारण करने वाले, चौथा समान महान आत्माएं है, महान वस्तु को देखने वाले हैं हम, जो अमहान वस्तु है उसको नहीं देखते हम, जो गैर महान है उसको नहीं देखते हम, किसको देखते हैं, महान वस्तु को देखने वाले। वो जो देह को देखने वाली दृष्टि थी अब खो चुकी है, अब विसर्जित हो गई है, अब हमारी आंख केवल आत्मा को देखती है। ये देखना ही हमारी महानता है, महान बोल, महान कर्म, महान देखना, महान भूमि, ऐसे महात्मा तुम हो। बाप की शुभ आशा के दीपक तुम हो, ऐसे मास्टर शिक्षक तुम हो। कब सिखाते हो, जब तख्त पर बैठते हो तब, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते भी सोते हुए क्या सिखाते हो, कैसे सोया जाए, योगी कैसे सोता है ये सिखाते हो, बोलते हुए क्या सिखाते हो, मधुर बोल। रामायण में दिखाया है जब भी लक्ष्मण को हमेशा क्रोध आता है, कोई भी चीज पे बार बार लक्ष्मण को क्रोध आता है, जल सम वचन बोले रघुनाथा, पर राम के वचन ऐसे है शीतल जल की समान, राहत पहुंचाने वाले। तो हम अपने बोल के द्वारा भी सिखाते हैं, कर्मों के द्वारा। और एक बात रह गई है पूर्वज आत्माओं की, चार बातें हैं, दृष्टि वृत्ति स्मृति और कृति। वृत्ति, विश्व के वातावरण के को तुम परिवर्तन करते हो अपनी वृत्ति से, दृष्टि से ब्रदरहुड की स्मृति दिलाते हो आत्माओं को, हम उन्हें दृष्टि देते हो, और वासुदैव कुटुंबकम ये विश्व ची माजे घर, ये सब हमारे हैं, ये भाव उनमें जागृत होता है। हम यहाँ बाप को याद करते हो और उनके मन में क्या संकल्प आता है उधर, क्या ये सोचा है हम अमृत वेले यहाँ योग करते और शाम का योग करते हैं, तो संसार की आत्माओं के मन में आता है हमारा बाबा आ गया, तो जितना ज्यादा हम योग करेंगे उतना ज्यादा उनके मन में ये आएगा, और भाग भाग कर आत्माएं इस सागर के कंठे पर आएगी। हमारे कर्म कौन सा, चरित्र निर्माण की क्या शुभाश उनमें पैदा करती है। आज संसार में चारित्रिक पतन हो रहा है, चरित्र की कहीं बात नहीं है, पर्सनैलिटी कोर्सेस है परंतु वहां चरित्र नहीं बनाया जाता है, चरित्र का दारिद्र है, चारित्रिक दारिद्र। ऐसी विपन्नता संसार में छाई हुई है, ऐसी चारित्रिक संपन्नता से संसार को हमें भरना है। तो हम मास्टर शिक्षक है, टीचर। भारत में पांच प्रकार के टीचर्स होते हैं, भारत की संस्कृति में पांच प्रकार के टीचर गाये हुए हैं। सबसे पहला टीचर, सबसे उच्च कोटि का, सबसे उच्च श्रेणी का, उसे कहा जाता है अरिहंत। अरिहंत अर्थात जिसने पा लिया है, जिसने समझ लिया है, केवल समझा नहीं, केवल पाया नहीं है, रियलाइज्ड एनलाइटेंड सोल जो है वो, और उनमें इतना पावर भी है कि दूसरों को एनलाइट कर सकते हैं, एनलाइटमेंट ला सकते हैं दूसरों में वो जागृति ला सकते हैं, ऐसे जो भारत में हुए हैं, भारत की सभ्यता उन्हें कहती है अरिहंत। दूसरे जो है वो है सिद्ध। सिद्ध ने भी पाया है, सिद्ध भी एनलाइटेंट हुआ है, सिद्ध भी उस उच्च परमहंस अवस्था तक पहुंचा है, परंतु दूसरों को एनलाइट नहीं कर सकता, ये पावर थोड़ी लैकिंग है, इस पावर की थोड़ी कमी है। तीसरा है कौन सा, पता है किसी को, आचार्य। तीसरे प्रकार का टीचर जो भारत में है वो है आचार्य। आचार्य जो है वो मास्टर स्वयं है परंतु अथॉरिटी नहीं है, वो कोट करता है। यहां ऐसा है, इसने ये कहा। उदाहरण के लिए अरिहंत यदि जीसस क्राइस्ट को कहा गया है तो पोप जो है वो आचार्य है, वो बात बात कहता है कि इसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, हमारे धर्म में हमारे गुरु ने हमारे अवतार ने ये कहा वो कहा फलाका ढलाका। चौथा है उपाध्याय। उपाध्याय जो होता है वो टुकड़े टुकड़े जानता है, उसने पूरा जाना भी नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा जाना है। मास्टर जो आचार्य था उसने सब जाना है परंतु अथॉरिटी नहीं है। उपाध्याय जो है उसने टुकड़े टुकड़े जाना है, फ्रैगमेंट्स टुकड़े टुकड़े। और पांचवा प्रकार है वो है सन्यासी। सन्यासी शिक्षक होता है गृहस्थियों का, ऐसा ऐसी मान्यता है। अब ये जो सन्यासी है वो खुद ही पुरुषार्थ कर रहा है पाने का, उसने पाया नहीं है। ऐसे पांच प्रकार के शिक्षक। और हम सब कौन है फिर अब इन पांच कैटेगरी में से? सब अरिहंत जिसको कहते हैं, ऐसे मास्टर शिक्षक तुम हो। पर परंतु बाबा ने कहा ये पार्ट अभी बाकी है, ये पार्ट अभी आया नहीं है, तुम स्टेज पर आ जाओ मास्टर सर्वशक्तिवान। एक क्षमा नहीं, सर्व क्षमा। जैसे एक क्षमा का आकर्षण है वैसे सर्व क्षमा का आकर्षण हो जाए। तुम स्टेज पर आ जाओ ऐसे लाइट माइट के गोले, सर्व को वो लाइट आकर्षित करे ऐसे चैतन्य लाइट हाउस। तो आबू निवासी क्या करेंगे? आगे पीछे परवानों की तरह दौड़ेंगे और क्या कहेंगे? जी हुजूर कोई सेवा है तो बताओ, कहीं बोर्ड लगाना है, कहीं प्रदर्शनी लगानी है, कोई मेला करना है तो हम लगा देंगे, बस कह दो क्या करना क्या है। तो जी हुजूर ऐसा कब होगा? चैतन्य लाइट हाउस, चैतन्य माइट हाउस, आग, लाइट माइट का गोला, द ऑर्ब ऑफ लाइट एंड माइट। तो ऐसे शिक्षक, ऐसी मूविंग लाइब्रेरी, ऐसे मूविंग शिक्षक हम बन जाए। बाप मधुबन निवासियों को विशेष आत्माओं की नजर से देखते हैं। बाप की आशाओं के दीपक, कितने ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए हैं बाबा ने। तो मुरली से धारण क्या करना है? हम कौन है? पूर्वज है। हम कौन है? मूल आधार है। हम कौन है? तना है। हम कौन है? फाउंडेशन है, नींव है, बुनियाद है, ईंट का ये पत्थर है, शिलान्यास हमसे हुआ है, सारा ये भवन हम पर खड़ा है। तो हम पूर्वज हैं, हम दाता है, हम वरदाता है, ये सारे हमारे स्वमान है। एक एक स्वमान का अभ्यास करना, एक एक स्वमान को चित्त की गहराई में उतरने देना, अवचेतन का वो एक भाग बन जाए, हमारा अंतर मन सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर ले कि हाँ हम ये है। अल्लाह लोक हो, न्यारे लोक हो तुम, वो नहीं जो संसार वाले है। तुम्हारे पास कितनी बड़ी अथॉरिटी है, तुम स्वयं ही अथॉरिटी हो। तो ऐसे सर्व पूज्य आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ पूर्वज आत्माओं को, ऐसे सर्व आत्माओं के मूल आधार आत्माओं को, ऐसे सर्व आत्माओं को एक बाप के अधिकारी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे अनेकों रास्तों से निकाल एक रास्ते में लाने वाली आत्माओं को, ऐसे अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति के अंचलिका की अनुभूति कराने वाली आत्माओं को, ऐसे संसार की आत्माओं की प्राप्ति की सभी आश को पूर्ण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।